राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कर्णवास जेठ सुदी 30 संवत 1995 दिनांक 1/6/38 सदा ही सेवा भाव रखो। जो सेवा किया करते हैं उनको सेवा का लक्ष्य बना लेना चाहिए। जैसे रेल में यात्रा करते हैं तो मैं आराम से बैठ जाऊं, दूसरे भले ही दुख पावे, ये भाव नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, अपने सुख के लिए तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन अपने तकलीफ सहकर के दूसरों को आराम पहुंचाने की बात तो कोई मनुष्य ही सोच सकता है। जो ऐसा सोचेगा वो बड़ा अच्छा विचारवान है और स्वयं तकलीफ सहकर दूसरों को आराम देने से दोनों को आराम मिलेगा। आप लोग सत्संग करते हो, अच्छे आदमी कहलाते हो, फिर आप में भी यदि ये भाव नहीं आया तो फिर जो दूसरे लोग सत्संग करते ही नहीं उनमें तो ऐसा कैसे भाव आएगा। सेवा का भाव बड़ा अच्छा है, दूसरों को आराम पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए। कम से कम दूसरों को तो आराम पहुंचाना ही है ऐसा मान करके चलो। सबकी आत्मा का हित करना चाहिए। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की आत्मा को दुख पहुंचाने के समान कोई सुख पहुंचाने के समान कोई धर्म नहीं और दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। ये बात जब लिखी हुई है शास्त्रों में तो फिर इसको आप ध्यान में क्यों नहीं रखते? सुख देने में न्याय युक्त सुख देव, अन्याय का सुख मत देव। अन्याय के सुख देने से भयंकर दुख होंगे दोनों को। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, परहित बस जिनके मन माही, ताको कछु दुर्लभ जग नाही। न्याय युक्त सुखदेव, जिनके मन में दूसरों का हित निवास करता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, भगवान भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए आज से ये प्रण कर लेना चाहे, इस शरीर पर श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, महात्माओं के वचनों पर श्रद्धा करनी चाहिए। शरीर तो चाहे पूज्य से पूज्य का भी क्यों न हो मरेगा, शरीर को तो कितना ही सजा लो और कितना ही इसको संवार लो, फूंक देना ही होगा। उन लोगों की हड्डियां तो हमारे पैरों तले आएंगी, तो महात्मा के शरीर में क्या श्रद्धा करो, महात्मा के वचनों में श्रद्धा करो। कैसी उल्टी रीत है, महात्मा के हड्डी मांस वाले शरीर को आदर देकर मन में खुश हो जाते हैं, हमारी महात्माओं में बड़ी श्रद्धा हो गई। क्यों आप अपने आप को धोखा देते हो? श्रद्धा उसको कहते हैं जहां उनके वचनों से जरा तिल भर भी इधर उधर न हिले, जिससे कल्याण हो उनके वचनों पर जो श्रद्धा करनी है, यही वास्तव में श्रद्धा है। सभ्यता के नाते भोजन कराओ, ये तो भोजन तो आप किसी को भी कराओ। मूर्ख लोग वचनों के पालन को तो गौण मानते हैं कि वो तो मासूम है को नहीं, और शरीर की सेवा को बड़ा प्रधान मानते हैं। जिसके पास खूब धन है उसको कोई दान देवे कि हम आपको दान देते हैं या हम आपको पैसा देते हैं आप अपना खर्चा चला लेना, क्या ये न्याय है? जिसको बेचारे को आवश्यकता है नहीं और वो बीमार है, उसके पास वस्तु नहीं है, बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं है, खाने का भी पैसा नहीं है, उसको देओ। ऐसे ही महात्मा के शरीर की सेवा उनके प्रारब्ध से यूं ही हो जाती है। वचनों का पालन करना तो हमारा नया काम है। गौरांग महाप्रभु ऐसे ही करते थे। किसी दुखी आदमी की जगह, किसी दुखी की अपेक्षा उस महात्मा की शरीर से तब सेवा करने की आवश्यकता है जब महात्मा असमर्थ हो जाए, बुड्ढे हो जाए, कोई सेवा नहीं करता हो, तो वो लाचारी समझ करके सेवा करो। परंतु दुखियों की सेवा में इनसे भी आगे तत्पर रहकर करो। एक महात्मा बीमार है और एक अनाथ आदमी बीमार है, अनाथ। तो आप दौड़ करके किसकी सेवा में पहले जाओगे? आप तो महात्मा की सेवा करोगे, क्योंकि आपके मन में एक भावना बैठी है कि महात्मा के शरीर की सेवा करने से हमको ज्यादा लाभ होगा। अनाथ की सेवा में केपड़ियों है, करो नहीं करो कौन पूछे, के फायदो? देखो, मेरी समझ में तो महात्मा की अपेक्षा अनाथ की सेवा करो, चाहे थोड़े ही लाभ हो। यदि मेरे सामने बात आए तो मैं तो अनाथ की सेवा पहले करने में ज्यादा रुचि रखता हूं, चाहे थोड़ो से ही लाभ हो, चाहे बिल्कुल ही ना हो। परंतु मेरो कर्तव्य अनाथ की सेवा करने को है। सेवा भी कई प्रकार की हुए। सबसे नीची सेवा होती है वो अपने को लेनी चाहिए। कई ऐसे होते हैं जिनको कोई छूना भी नहीं चाहते, तो उसकी सेवा करो, बहुत लाभ होगा। एक एक बीमार है, उसकी दवाई आदि का सब प्रबंध है, परंतु वो टट्टी पेशाब के लिए जा नहीं सकता है, बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब करता है, उसकी टट्टी पेशाब कोई नहीं उठाता है, तो अपने को दवाई आदि देने के बजाय टट्टी पेशाब से उसको साफ करने का सबसे नीचा काम लेना चाहिए। जान जान करके ढूंढो कि नीची सेवा कौन सी है। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, भगवान कृष्ण ने आने वाले सभी के पैर धोने का काम लिया, सबसे नीचा काम। और यदि सबसे नीची सेवा मिल जाए तो खूब प्रसन्न होना चाहिए, ये सेवा के विषय की बात है। ये सेवा की बात परमात्मा तक कानून की दृष्टि से देखो। एक मंदिर में खूब भीड़ हो रही है, उसी समय दर्शन करने से लाभ होता है, तो ऐसा पुरुष होगा वो दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए खुद पीछे रह जाएगा, उसे पीछे रह जाना चाहिए। और जब भीड़ समाप्त हो जाए तो फिर मंदिर में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मैं समय पर नहीं पहुंच सका, तो भगवान उसको बहुत अच्छी सेवा मानेंगे। ये मत गिनाओ कि महाराज मैंने कितने लोगों को दर्शन कराने के लिए आगे कर दिया, ऐसा मत कहना। वही कहना कि मैं समय पर उपस्थित नहीं हो सका। इसी प्रकार गंगा जी में स्नान करने की बात है, सबसे घटिया चीज लेनी चाहिए, सेवा लेनी चाहिए। सारी दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए पर अपने को तो सबसे छोटी सेवा लेने की दृष्टि रखनी चाहिए। अपने को सेवक समझो, फिर सेवा होगी। सेवा करके सेवामान सेवक बनोगे तो घमंड हो जाएगा। वाह सेठ जी, सेवा करके सेवक मानोगे तो घमंड हो जाएगा, सेवक मान करके सेवा करोगे तो घमंड, मेरे तो काम ही सेवा करने है, घमंड, मैंने सेवा की है, ये मैंने सेवा की है इसलिए सेवक हूं, तो घमंड होगा, मैं तो सेवक ही हूं साहब, सेवक हूं। सबसे बढ़िया चीज दूसरों को दे और सबसे घटिया चीज अपने ले। मेरी बात को मैं इस ढंग से भी कहना चाहता हूं, मंदिर में साक्षात भगवान आगे और दर्शन करते हैं और खूब भीड़ है तो औरों को अंदर भेजो, खुद बाहर खड़े रहो, है ताकत किसी की? भगवान भी आ जाए और दर्शन करने वालों की खूब भीड़ है तो वह दूसरों को आगे करे, स्वयं दर्शन के लिए दौड़ भाग नहीं करे। इसमें रहस्य बताते हैं, सब दर्शन करके चले जाएंगे, भीड़ समाप्त हो जाएगी, भगवान उस व्यक्ति के दर्शन करने के लिए खड़े रहने जाएंगे। भगवान देखे दूसरों को दर्शन कराने में जिसने मदद की है मैं उसका दर्शन करूं, जाएंगे नहीं भगवान। भगवान को उसके लिए ठहरना पड़ेगा, उसको छोड़ करके भगवान चले जाए भगवान की सामर्थ्य नहीं है। सज्जनों क्या संतों की कृपा से अमृत के गुटके मिल रहे हैं अपने, अपने भाइयों को तो अच्छी चीज और अपने को हल्की चीज लेनी चाहिए। धक्का मुक्का मार करके खूब भीड़ के अंदर जाना ये कलंक की बात है। 10 आदमियों को भोजन कराया और स्वयं भूखा रह गया तो कोई बात नहीं, वो जो भूख है वो भोजन से बहुत अच्छी है। थोड़ा धैर्य रखो, इस साधन में विश्वास करो, ये निष्काम सेवा बड़ी विलक्षण है और बड़ी महत्व की चीज है। आप इसका तत्काल फल देखने की उतावली मत करो। स्वार्थ के त्याग पर ज्यादा ध्यान दो। सब काम में निष्काम भाव रखो। निष्काम भाव को इतना महत्व दो तो भगवान की सेवा में भी नहीं है इतना ऊंचा काम, इतना ऊंचा लाभ। भगवान की सेवा करते करते कुछ मांग रह जाती है, निष्काम भाव तो है ही नहीं। यहां प्राप्ति का त्याग दूसरों के लिए है। आप भूखा मर रहा है किंतु कोई आ जाए तो प्रसन्नता से दे दे, किंतु अपने में इतना भाव नहीं आया है तो प्रारंभ कर दो। चाहे उपवास हो जाए दूसरों को भोजन देना प्रारंभ करो। इस उपवास का महत्व एक साल की एकादशी का महत्व भी नहीं है, पर करें क्या, लोगों को विश्वास नहीं है, मूर्खता बहुत छाई हुई है। हम तो इससे आगे की बात भी बोलते हैं कि यदि आपने दूसरों को देने में उपवास किया और मृत्यु हो जाए तो आप मोक्ष से भी आगे चले गए हैं, विश्वास नहीं। एकादशी के उपवास पर महत्व है, परंतु हमारी दृष्टि में दूसरों को भोजन करा करके जो उपवास किया एकादशी उसके सामने कुछ नहीं है, इतना महत्व नहीं है जितना कि नियमों का महत्व है। अतिथि की सेवा में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान समाधि की कोई आवश्यकता नहीं, प्रसन्नता के साथ भूखा रहकर दूसरों को दे, ये सेवा की बड़ी ऊंची बात है। सब कामों में जो स्वार्थ का त्याग है ये सबसे ऊंचा त्याग है। अच्छी अच्छी सबको देओ, हल्की हल्की अपने ले, ये भाव रहने से त्याग बढ़ेगा। भगवान के दर्शन में भी पहले सबको दर्शन कराओ, अंत में फिर स्वयं दर्शन करें। जहां ये घोषणा करें कि मैं इस सभा में बैठे सब लोगों में से एक को दर्शन दूंगा, भगवान ये घोषणा करें, छूट गया ये, भगवान ये घोषणा करें कि हे लोगों, इस सभा में बैठे हुए आप लोगों में से किसी एक को ही दर्शन दूंगा, तो सच्चे मन से भगवान को कहो कि महाराज मेरे को मत चुनना, मेरे को टाल देना दूसरों को, किसी एक को ही दोगे तो मुझे टाल देना। यदि ये सभा में बैठे हुए सब लोग ऐसा बोलेंगे, मानेंगे, विचार करेंगे कि नहीं मेरे को टाल दो, मेरे को टाल दो, मेरे को टाल दो, तो फिर भगवान को मजबूर होकर, विवश होकर सभी को दर्शन देना पड़ेगा। अतिथि को स्वयं भूखा रहकर जो भोजन दिया जाए वो 24 एकादशी के उपवास से भी बड़ा है। दूसरा हम विषय कहते हैं, अपने घर में जितने बड़े लोग हैं उन सबको नित प्रति प्रणाम करना चाहिए। परंतु स्त्रियों को चाहिए कि वह पुरुषों को प्रणाम करते समय दूर से प्रणाम करें, क्योंकि विवाह के बाद उसका एक पति ही सब कुछ होता है। पुरुषों को चाहिए कि जो परम पूज्य हैं उनको छूकर प्रणाम करें, और जो अवस्था में बराबर के हैं उसको दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए। ये सिस्टम अपने घर में कर लेना चाहिए। इससे क्या फायदा है कि इससे घर में कलह नहीं हो सकता, मनमुटाव नहीं होगा। ये व्यवहार आप करके देखो, आपकी इसमें श्रद्धा कम है, इसलिए इस व्यवहार को समझते नहीं है, ये करके देखो। तीसरी बात है, हरेक भाई को बलि वैश्वदेव अवश्य करना चाहिए। बिना बलि वैश्वदेव के जो भोजन करता है वह तो पाप का भोजन है। यह क्रियात्मक बात होनी चाहिए, यह बहुत सरल काम है। प्रेम पूर्वक बलि वैश्वदेव किया जाए तो फिर वह अमृत के समान भोजन होता है। हमारी माताएं भोजन बनाते समय पहले छोटा सा बाटिया बनाती थी, अभी भी बनाती हैं, उसमें घी डाल करके और उस छोटे से बाटिए को अग्नि में देते थे। कितनी अच्छी बात है, अग्नि को नारायण स्वरूप समझा गया है, आहुति दी जाए, कितनी अच्छी बात है। इसलिए बलि वैश्वदेव करना चाहिए, अनेकों लाभ है, खर्च कुछ भी नहीं है, समय 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। कहते हम तो जानते ही नहीं, हमारे संस्कार में ही नहीं, तो क्या करे, भोजन करने से पहले भगवान को प्रार्थना करे। जो नहीं जानते हैं उनके लिए बात है, और बलि वैश्वदेव को जो जानते हैं उनको बलि वैश्वदेव करना चाहिए। नहीं जानते हम तो भगवान को याद, हे भगवान आपका दिया हुआ भोजन मुझे मिल रहा है, आप मुझे देने वाले हैं और मैं आपका भोजन पाकर के भी कैसा हूं जो आपसे विमुख रहता हूं, आपका भजन नहीं करता हूं। ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, उसके बाद भोजन करो। हमारे साधुओं में गीता का 15वां अध्याय बोलते हैं, अनेकों लाभ, कुछ खर्च नहीं है, समय 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, महात्म्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। प्रणाम करने में कुछ खर्च नहीं लगता, न रुपया लगता है न समय लगता है। तो मैंने आपको अभी 3 बताई बात, सेवा, प्रणाम और बलि वैश्वदेव। हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, सजावट वगैरह देखते हैं, इससे ज्यादा लाभ नहीं होता। देखो ध्यान से, हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, वहां सजावट वगैरह देखते हैं, इससे ज्यादा लाभ नहीं होता। वहां जाकर केवल भगवान के स्वरूप पर नजर रखो, भगवान के दर्शन करो तो उनके चरित्रों की स्मृति जागृत हो। भगवान के चरित्रों की स्मृति में और भगवान के स्वरूप में तल्लीन हो जाओ। मंदिर की सुंदरता, मंदिर की सजावट, ये कोई खास चीज नहीं है। जैसे आप भगवान राम के मंदिर में गए तो राम का चरित्र एकदम आपके सामने आ जाए। कृष्ण भगवान के मंदिर में गए, एकदम उनका चरित्र सामने आ जाए। भगवान से आर्त होकर प्रार्थना करें, हे भगवान हर वक्त आपका चिंतन बना रहे और मैं कुछ नहीं चाहता हूं। स्त्रियों के लिए कहना है, मंदिर में जाए तो पति के साथ जाए, अकेली नहीं जाए। विधवा हो तो पुत्र के साथ जाए, एवं अविवाहिता हो तो पिता के साथ जा सकती है। मंदिर में दोनों बात है, लाभ भी है और हानि है। लाभ तो यह है कि भगवान के दर्शन करने चाहिए, भगवान की स्मृति पैदा होती है। और हानि यह है कि कहीं कोई मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी का व्यवहार बुरा भी हो जाए तो वो धर्म भ्रष्ट कर सकता है, इसलिए हमने इतनी बात कही है। कोई कहीं जाने की स्थिति में नहीं हो तो अपने हृदय में भगवान का स्वरूप बैठा हो, मानसिक पूजा करो। यदि मन से और प्रसन्नता से पूजा करते हैं, मन में विराजमान भगवान की जो मूर्ति बसाई है, तो वो मंदिर में जाकर दर्शन करने की अपेक्षा कितनी ही ऊंची है। मानसिक मूर्ति की पूजा सबसे अच्छी है, साथ साथ में भगवान का जाप तो होना ही चाहिए। भगवान का स्वरूप, भगवान का लावण्य, भगवान का गुण प्रभाव इन सबको देख देख करके बहुत खुश होना चाहिए। इसकी हर वक्त चिकनाहट रखने के लिए ये बात है, राम जी की मूर्ति है उसकी हर वक्त तुष्टि पुष्टि रखनी चाहिए, और तुष्टि पुष्टि हमारे प्रेम रस से होती है। हम प्रेम देवे भगवान को, इससे भगवान को पुष्टि मिलती है। और तुष्टि, तुष्टि माने संतोष, भगवान की मूर्ति को देखे, प्रत्येक क्रिया को करते समय राम को साथ साथ देखो। स्त्रियों से यदि बात करने की नौबत आती हो तो राम की स्मृति रख करके लक्ष्य रखना चाहिए कि राम स्त्रियों से कैसे बात करते होंगे और राम स्त्रियों से कैसे सावधान रहते होंगे, ऐसे बात करो। प्रत्येक क्रिया को राम का लक्ष्य करके करो। इस प्रकार प्रातःकाल खुराक की माफिक एक घंटे तक भगवान का मनन करना चाहिए और उसको भरकर सारे दिन तक मनन करते हुए मगन रहना चाहिए। अपने बुद्धि में निश्चय करो कि हमारी सारी क्रिया में राम आदर्श है। किसी को दान देता है वह तो कर्म है, दान देने से जो दया आती है यह है, इससे गुणों की वृद्धि होती है। इसी प्रकार पाप से दुर्गुण और पुण्य से सद्गुण होते हैं। जब ध्यान तो हो ही रहा है, यह प्रभु की असली सेवा है। इस प्रकार का जो जीवन है वो बड़ा पवित्र है। भगवान के गुणों का अक्षर सेति यदि हम पालन करते हैं और पालन करवाते हैं, यह भगवान की भक्ति द्वारा प्राप्त होता है। प्रभु का प्यारा कार्य करने वाला न तो प्रभु का प्यारा भक्ति का काम करने वाला न तो ऐसा हुआ न होगा। ये सबसे बढ़कर माने जो भक्ति में लोग स्वयं लगा रहता है, इससे बढ़कर भगवान का कोई प्रिय नहीं है। ये सबसे बढ़कर बात है। जो शेष बातों की बातों को काम में नहीं लाता है और केवल पूजा करता है, वह लाभ तो पावेगा, क्योंकि वो पूजा करता है और वह दो घंटे करता है, परंतु प्रेम जब पैदा होने लगता है और उसकी स्मृति जब पैदा होती है वो एक अलग ही लाभ होता है। राम जी युद्ध कर रहे हैं, युद्ध से भागते नहीं हैं। जो ये समझते हैं कि गीता पढ़ने से सन्यासी हो जाता है, ये बात नहीं है। गीता पढ़ने से यदि सन्यासी होते तो सबसे पहले अर्जुन ही हो जाते। सन्यासी कौन होता है ये समझते ही नहीं। सन्यासी तो गृहस्थी भी हो सकता है, जो कर्म के फल को त्याग दे वो सन्यासी, जो भगवान के लिए सब कर्म अर्पण करता है वो सन्यासी। सांख्य योग से कर्मयोग अच्छा है। वैश्य को चाहिए कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा। जितनी जो 84 लाख योनियां हैं वे सब बड़ा भारी थिएटर है, थिएटर है, थिएटर थिएटर है, थिएटर इसमें लिखा थिएटर है, उनमें हमारा भी एक स्वांग है। शेर जी मोटर को मटर बोल देते, मटर भैया हमारे वाली मटर का है। और एक बार ऐसा ही हुआ, शेर जी ने कहा भाई मटर मटर लाओ, तो वो वास्तव में मटर ले आया। क्यों के लाए हो, कहते बोलिया नहीं, अरे मैं आ नहीं, मैं बात चालना आने के लिए बात नहीं। बहुत भोली शब्दावली। तो ये थिएटर है, हम भी इसमें स्वांग करते हैं। भीतर में तो साक्षात नारायण है। सो अनन्य जाके सदा मति न तरई हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूह परासि भगवंत सियावर रामचंद्र जी की जय। वैश्य को अपने कर्म द्वारा संतोष कराना चाहिए। वर्तमान में गौ सेवा तो प्राय छूट ही गई, इसलिए जिस काम से गौ की वृद्धि हो वही कार्य करो। इनमें से दो तो करना चाहिए, दो यदि नहीं करो तो बाबा कम से कम एक तो करो। आज का आजकल का काम तो नरक का ही हो रहा है, जिसमें नरक मिले वही काम करें। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मन है। व्यापार में प्रधान लोभ रहता है, व्यापार करेंगे लोभ आगे रखेंगे, लोभ से पतन होता है। हम लोगों के व्यापार का ध्येय हो गया रुपया कमाओ, बस रुपया होना चाहिए, वो चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए, सब कुछ हो जाए, रुपया आना चाहिए। लोभ है, सुख दुख हानि लाभ आदि समान समझकर व्यापार करो। जो कुछ है वो प्रभु का है ऐसा भीतर समझ करके व्यवहार करो। भगवान अर्जुन से इसीलिए युद्ध करा रहे हैं कि प्रजा को सुख मिलेगा, इन पापियों से प्रजा का पिंड छूटेगा, अधर्म का नाश होगा। यहां सारी दुनिया प्रजा है, तो फिर लड़ाई उसके साथ की जाए जो रुपया इकट्ठे करते हैं। जैसे बाढ़ आ गई, वहां एक मनुष्य गया और चीजों के दूने तीने दाम कर दिए, ये महापाप है। केदारखंड में जब 2-3 साल पहले प्रलय हुआ, एक बिस्कुट का 1,000 रुपया, एक बिस्कुट का, एक बिस्कुट, किसी ने बोतल ले जाके जल दिया, वो पानी वाली बोतल, उसके कितने ही रुपए है। वो कहते हैं भाई हम सब दे देंगे, अभी हमारा सब कुछ बह गया है रुपया। ये महान पाप है, ये कैसा पैसा लेते हो, करना तो ये चाहिए उनको मुफ्त में दे। ये समझना चाहिए कि बाढ़ आई हुई संकटग्रस्त है, मेरे पास कुछ है तो मैं इनको सेवा करूं। व्यापार को न्याय से करो, नफा ज्यादा मत ले। एक अच्छी चीज में बुरी चीज नहीं मिलाओ, ऐसे मिलावट करने से मनुष्य का स्वास्थ्य का नाश होता है और खुद को नरक मिलता है। जैसे घी में चर्बी मिला देना, ताजा आटा में पुराना आटा मिला देना, ये सारा पाप उनको लगेगा जो ऐसा बेचते हैं। और झूठ कपट से बहुत अधिक मुनाफा लेते हैं, खराब चीज बेचते हैं और फिर कोई घटना होती है तो बुरी तरह से रोते हैं, हम कहते हैं अभी रोने का वक्त नहीं है, मरोगे उसके बाद तुम कितना कष्ट पाओगे वो है। वर्तमान में अधिकांश लोगों ने जो व्यापार कर रखा है वो नरक की ओर ले जाने का है। मनुष्य का ध्येय रुपयों की ओर रह रहा है। अरे इन लोभी आदमियों से अपने को सीखना चाहिए, ऐसी वृत्ति हमारी प्रभु की ओर रहे। ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप खर्च ज्यादा करते हो इसलिए रुपया ज्यादा कमाना चाहते हो। ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, शरीर निर्वाह उतना बहुत है। ईश्वर के पैसे समझकर जितना कम खर्च करोगे उतना अच्छा है, स्वभाव खराब नहीं होगा। जो हमारा मूल धन है वो प्रभु का समझो। ज्यादा धन हो तो दान पुण्य दान फंड में डाल दो। इस प्रकार व्यापार कल्याण करने वाला है। गीता का यह उद्देश्य नहीं है कि कर्म को छोड़ दो। गीता में कोई भी श्लोक नहीं है जो कर्म को छोड़ देने की बात कहे। अर्जुन ने कोई संन्यास धारण थोड़ा ही किया, कर्म किया, तो गीता संन्यासी नहीं बनाती है। ध्यान एकांत में हो बड़ी अच्छी बात है, और ध्यान रखते हुए यदि काम करो तो इससे भी अच्छी बात है। जैसे एक होद है उसमें एक नाड़ा है, और यदि दो होता है तो जल्दी भर जाएगा, तीन हो तो और जल्दी भर जाएगा। तीसरा नाला यह है कि जप करें, मीठा वचन बोलें, मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करें, इस होद में कितनी जल की आमदनी होगी। ऐसे ही आपके हृदय में कितना भगवत भाव बढ़ेगा और उससे आपके मन में बड़ी प्रसन्नता होगी। सब इंद्रियों को भगवान की तरफ लगाने में काम में ले। इसलिए काम करते समय भगवान का स्मरण रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो भगवान ये नहीं कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मा मनुस्मर परयुध्यते। इसलिए स्मरण करते हुए काम करो, इस बात पर विशेष जोर दो सब में भगवान है। ऐसा समझने से हम भगवान को भूल कैसे सकते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, भगवान सब जगह है। ये बात समझ में आ जाए फिर प्रभु को कैसे भूल सकते हैं। जिस प्रकार प्रह्लाद प्रभु को देखता था उसी प्रकार हमें भी सर्वत्र प्रभु को देखना चाहिए और उनका स्मरण करते हुए कार्य करना चाहिए। निरंतर प्रभु का स्मरण करें। जो जवान लोग हैं उनको तो विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये डुबाने वाला युग आ रहा है, अपने को हम कैसे बचाएं। विशेष करके भजन साधन में लग ही जाना चाहिए।